राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय एक। पहला राजा की पुस्तक के अध्ययन में हमने मुख्य रूप से उत्तरी राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसका राजा दुष्ट आहाब था। आहाब और उसकी दुष्ट पत्नी इजबेल ने इसराइल के उत्तरी राज्य को नैतिकता और आत्मिकता से गिराकर अंधकार के गड्ढे में डाल दिया था। उन्होंने प्रजा को मूर्ति पूजा, विशेष करके बाल की उपासना में मग्न कर दिया था। बाल की उपासना वहां इजबेल के कारण आरंभ हुई, क्योंकि वो सिदोन की रहने वाली थी। बाल सिदोनियों का प्रमुख देवता था और उसने इसराइलियों की उपासना में बाल का परिचय करवाया, जिसके कारण इसराइली धर्म भ्रष्ट हो गए थे। पहले राजा की पुस्तक के अंत में आहाब की मृत्यु के बाद उसका बेटा अहज्याह राजगद्दी पर बैठा, जिसने इसराइल पर 2 वर्ष तक राज्य किया। अहज्याह के समय में मोआब, जो यर्दन पार है, जिसे आज हम जॉर्डन कहते हैं, इसराइल के अधीनस्थ राज्य थे। उन्होंने इसराइल से विद्रोह कर दिया। अध्याय एक पद एक। आहाब के मरने के बाद मोआब इसराइल के विरुद्ध हो गया। अहज्याह एक जिल्मीदार खिड़की में से, जो शमरोन में उसकी अटारी में थी, गिर पड़ा। वो जिल्मीदार खिड़की में से जो उसकी अटारी में थी गिरकर घायल हो गया। तब उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर एक्रोन के बेलजबूब नाम देवता से पूछकर आओ कि मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। बाल शब्द का अर्थ प्रभु है, इसलिए लोग प्रभु की उपासना कर रहे थे, परंतु वो प्रभु परमेश्वर यहोवा नहीं था। उनका प्रभु बेलजबूब था, जो वास्तव में मक्खियों का प्रभु था। इसलिए एक्रोन के लोग अनजाने में मक्खियों की उपासना करते थे। ये मेरे लिए अनोखी बात है, बुद्धिमान लोग परमेश्वर की उपासना का त्याग करते हैं, परंतु अन्य मूर्खता की बातों पर विश्वास करते हैं। मैं सदा ही अचंभा करता हूं जब लोग अपने विचार और भावना में सत्य और जीवित परमेश्वर का त्याग करके मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। दाऊद ने कहा, भजन संहिता 53 का पहला पद, मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये तो निश्चय है कि जब कोई मनुष्य अपने जीवन से परमेश्वर को दूर कर देता है, तो मूर्खता बड़ी बातों का दोषी हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मक्खी की पूजा करेगा, उसे अपना प्रभु कहेगा? रोमियो अध्याय एक में पौलुस मनुष्य के बारे में हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रोमियो पहला अध्याय 21 और 25 पद। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। और आगे पौलुस बताता है, और उन्होंने सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आज ऐसे लोग भी हैं जो फूल देखकर कहते हैं ये ईश्वर है, या वे पेड़ को देखते हैं और कहते हैं कि ये ईश्वर है। इसलिए यदि वे मक्खी को भगवान कह दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति की उपासना करते हैं। लोग कहते हैं मुझे ईश्वर प्रकृति में दिखाई देता है, और वे प्रकृति की उपासना करते हैं। जैसे पौलुस कहता है, वे सृष्टि की उपासना और सेवा करते हैं, ना कि सृजनहार की। सृष्टि का तर्क संगत अवलोकन निस्संदेह उसकी रचना में उपस्थित बुद्धिमानी पर अचंभा करना है, परंतु सृष्टि की अपेक्षा सृष्टिकर्ता की उपासना करना क्या अधिक तर्क संगत नहीं? वास्तव में मक्खी बहुत चतुर है, वो महामारी है, परंतु अद्भुत छोटी सृष्टि है। मुझे उनके पक्के इरादे से घर में घुस आने की सफलता पर आश्चर्य होता है। मानो वे दरवाजे पर नजर लगाए हो और जैसे ही आप दरवाजा खोलते वे अंदर आ जाती है। मुझे मक्खी देखना अच्छा लगता है, मैं उनके देखने की शक्ति से हैरान हूं। वे 360 डिग्री देख पाने की क्षमता रखती है। आप चुपके से उनके पीछे जाओ और वे आपको देख लेती है। उनकी दृष्टि बड़ी तेज होती है। मैं मक्खियों के देखने की दृष्टि से बड़ा प्रभावित हूं। उसके पंखों के नीचे की बनावट ऐसी है कि उड़ते समय उसका संतुलन बना रहता है और उतरते समय वे कैसे अपने पैरों को पहले भूमि की सतह पर रखती है और उतरने से पहले या रुकने से पहले वे कितने पास तक पंख चलाती है कि पैर पहले रख पाए। क्या आपने कभी ये सोचा है? वो निश्चय ही एक अद्भुत सृष्टि है, परंतु वास्तव में उसकी उपासना नहीं की जानी चाहिए। ऐसा मनुष्य जो सृष्टि की पूजा करते हैं वे बेचारे अनजान और अज्ञानी हैं। वे उन चीजों की ही उपासना करते हैं जो उन्हें दिखती है। लोगों ने अपनी समझ से ईश्वर बना लिया जिनकी वे पूजा करते हैं। ये उनके अपने विचार हैं। उसने सेवकों को एक्रोन में भेजा कि एक्रोन के बाल जबूब देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं, और एलिया नबी आकर इन संदेश वाहकों से मिला और कहा। अध्याय 1:3-4। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? राजा ने अपना भविष्य पूछवाया था, इसलिए जब यहोवा तुझसे यू कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर जाएगा, तब एलिया चला गया। ये उसके राज्य के दूसरे वर्ष में हुआ। परमेश्वर का संदेश आया। अध्याय 1:5। अब अहजया के दूत सेवक उसके पास लौट आए। तब उसने या राजा ने उनसे कहा, तुम क्यों लौट आए हो? खाली हाथ कैसे लौट आए? मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम एक्रोन जाओ। अध्याय 1:5-6। उन्होंने उससे कहा कि एक मनुष्य हमसे मिलने को आया जब हम मार्ग में ही थे, और कहा कि जिस राजा ने तुमको भेजा उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन में बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। उसने यहोवा के इस संदेश के साथ उन्हें लौटने को कहा, तू मर ही जाएगा। अध्याय 1:7-8। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो रोवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, वो तिशबी एलिया होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक कठोर चरित्र का व्यक्ति था, और निस्संदेह एलिया भी बहुत ही कठोर चरित्र का मनुष्य था। वो कमर के नीचे चमड़े का वस्त्र पहनता था और उसके शरीर पर घने बाल थे। वो भ्रमण करता रहता था तो भी वो परमेश्वर के साथ सदा गहराई और अधिकाई से जुड़ा रहता था। अध्याय 1:9-11। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को اس کے 50 سپاہیوں سمیت بھیجا کہ ایلیا کو پکڑ کر لے آؤ۔ پردھان 50 سینکوں کے کپتان نے اس کے پاس جا کر کیا دیکھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے، اور اس نے اس سے کہا، ہے پرمیشور کے بھکت، راجہ نے کہا ہے کہ تو اترا، راجہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے اس کے سامنے اپستھت کروں۔ ایلیا نے اس 50 سپاہیوں کے پردھان سے کہا، یدی میں پرمیشور کا بھکت ہوں تو آکاش سے آگ گر کر تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر ڈالے۔ تب آکاش سے آگ اتری اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پھر راجہ نے اس کے پاس 50 سپاہیوں کے ایک اور پردھان کو 50 سپاہیوں سمیت بھیج دیا۔ پردھان نے اس سے کہا، ہے پرمیشور کے بھکت، راجہ نے کہا کہ فرتی سے تو اترا، راجہ تجھے بلاتا ہے۔ ایلیا ابھی چوٹی پر بیٹھا تھا کہ دوسرا پردھان راجہ کے سندیش کے ساتھ اس کے پاس پہنچا اور کہا، ہے پرمیشور کے بھکت، راجہ کہتا ہے کہ تو فرتی سے اتر آ۔ ادھیائے 1 پد 12 سے لے کر 13 تک۔ ایلیا نے اتر دے کر ان سے کہا، یدی میں پرمیشور کا بھکت ہوں تو آکاش سے آگ گر کر تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر ڈالے۔ تب آکاش سے پرمیشور کی آگ اتری اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پھر راجہ نے تیسری بار 50 سپاہیوں کا ایک اور پردھان کو 50 سپاہیوں سمیت بھیج دیا، اور 50 کا وہ تیسرا پردھان چڑھ کر ایلیا کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا اور گڑ گڑا کر اس سے کہنے لگا، ہے پرمیشور کے بھکت، مجھ پر دیا کر، میرے پران اور تیرے ان 50 داسوں کے پران تیری درشتی میں انمول ٹھہرے۔ 50 سپاہیوں کے جو دو پردھان اپنے اپنے 50 سمیت پہلے آئے تھے، ان کو تو آگ نے آکاش سے گر کر بھسم کر ڈالا، پرنتو اب میرا پران تیری درشتی میں انمول ٹھہرے۔ میں تو اپنی نوکری کر رہا ہوں، میں پریوار والا ہوں اور یہ سب بھی پریوار والے ہیں، پرنتو یدی تجھے اعتراض نہ ہو تو راجہ نے نویدن کیا ہے کہ تو اس کے پاس آئے، ہم آشا کرتے ہیں تو چلے گا۔ ادھیائے 1 پد 15 سے لے کر 18 تک۔ تب یہوا کے دوت نے ایلیا سے کہا، اس کے سنگ نیچے جا، اس سے مت ڈر۔ تب ایلیا اٹھ کر اس کے سنگ راجہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا، یہوا یوں کہتا ہے کہ تو نے تو ایکرون کو بلزبوب دیوتا سے پوچھنے کو دوت بھیجے تھے، تو کیا اسرائیل میں کوئی پرمیشور نہیں کہ جس سے تو پوچھ سکے؟ اس کارن تو جس پلنگ پر پڑا ہے اس پر سے کبھی نہ اٹھے گا، پرنتو مر ہی جائے گا۔ یہوا کے اس وچن کے انوسار جو ایلیا نے کہا تھا وہ مر گیا، اور اس کے سنتان نہ ہونے کے کارن یہورام اس کے ستھان پر یہودا کے راجہ یہوشوپات کے پتر یہورام کے دوسرے ورش میں راجیہ کرنے لگا۔ احجیا کے اور کام جو اس نے کیے، وہ کیا اسرائیل کے راجاؤں کے اتہاس کی پستک میں نہیں لکھے ہیں؟ دھیان دے، اتری راجیہ میں یہورام راجیہ کر رہا ہے اور دکشن میں دوسرا یہورام راجیہ کر رہا ہے۔ یہاں تھوڑی گڑبڑ ہونے کی سمبھاونا ہوتی۔ احجیا نے جب راجیہ آرمبھ کیا تب وہ جوان تھا، اس کے کوئی پتر نہیں تھا، اور وہ 2 ورش راجیہ کر کے مر گیا، اس لیے اس کے بھائی یہورام نے اسرائیل پر راجیہ کرنا آرمبھ کیا، کیونکہ اس کا کوئی بڑا پتر نہیں تھا جو راجیہ کرتا، اس لیے آہاب کے دوسرے پتر نے اسرائیل پر راجیہ کیا، جس کا نام بھی یہودا کے راجہ کے جیسے یہورام تھا۔ اس لیے اس سمے اتری راجیہ کی दक्षिण राज्य से तुलना करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इस समय दोनों ही राजाओं का नाम यहोराम था।